வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஃ. நமோ மகாவதன்னாய கிருஷ்ண பிரேம ப்ரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்யநாம்னே கௌரத்விஷே நமஃ. குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாயை ததாலயை கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமஃ. பக்த்யா விஹீனாய பராதலக்ஷை சித்தாஸ்ய மா கிருபாமயீ த்வாம் சரணம் ப்ரபன்னா ப்ரிந்தே நுமஸ்தே சரணாரவிந்தம். யம் ப்ரவ்ரஜந்தமனுபேதமபேதகிருத்யம் த்வைபாயனோ விரஹ காதர்யாஜுஹாவ புத்ரேதி தன்மயதயா தர்வோபிநேது தம் ஸர்வபூதஹ்ருதயம் முனிமாமுதுஷ. த்வை வாஸ்மி ந ஜீவாமி த்வயா வினா இதி விஜ்ஞாய ராதே தம் நயமாம் சரணம் ஸ்துதே. हम लोग अभी तक सनातन धर्म के संबंध में कुछ व्याख्या कर रहे थे. उसमें हम ये बतला रहे थे सनातन धर्म का की रीढ़ अथवा उसका प्लेटफॉर्म भगवान का रूप मानना है. इसलिए सनातन धर्म में भगवान का रूप माना गया है और वह रूप कृष्ण रूप राम रूप है. दोनों अलग अलग नहीं है. इसके संबंध में ही हमने बतलाया. दूसरे जितने भी धर्म कहे जाते हैं प्राय वो एक तरह से सामाजिक नीतियां हैं. आत्मधर्म सनातन धर्म नहीं है. उनकी पैदाइश हुई है और फिर वह समाप्त हो जाते हैं. किंतु हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म का जन्म नहीं है, अंत नहीं है, सब समय है. इसलिए सनातन धर्म कहते हैं. इसमें यदि सनातन धर्म का अच्छी तरह से समझकर पालन किया जाए तो सर्वकालिक भूत भविष्यत वर्तमान की जितनी भी समस्याएं हैं, सार्वजनिक समस्याएं हैं, समस्त लोगों की समस्याएं हैं और सब तरह की कठिन से कठिन पेचीदी समस्याएं हैं, श्रीमद् भागवत का सनातन धर्म के पालन से अपने आप समस्याएं सुलझ सकती हैं, अवश्य सुलझेंगे. किंतु उसके कुछ नियमों का पालन किया जाए, समझा जाए ये सनातन धर्म क्या है. यह शरीर का धर्म नहीं, आत्मा का धर्म है, हमने पहले बतलाया. और हम स्वरूपतः सभी आत्मा हैं, भगवान के नित्य दास हैं. सबसे पहले हम लोगों को इस विषय में कुछ नीतियां हैं साधारण रूप में, जो जिससे कि हम पालन करने से जिसके पालन करने से हम सनातन धर्म में प्रवेश कर सकते हैं. इसलिए उसको बतलाया गया कि कुछ ऐसे स्थान हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर कली निवास करता है. कली मैंने क्या, कलहम लाति इति कली, जो कलह विवाद झगड़ा मारपीट लूट मार ये सब तरह के दुख और संकटों को जो लाता है उसको कहते हैं कली. विशेष करके झगड़ा. इस युग में पति और पत्नी में, बेटे और बाप में, मैया और बेटे में भाई और भाई में कलह पैदा कर देता है कभी। बहुत ही कम लोग हैं जो इससे बच निकलते हैं, और इस सब का कारण है, पहले मद्यपान छोड़ना होगा। मद्यपान में शराब इत्यादि हैं। हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग गांजा भांग इत्यादि भी पीते हैं। इस देश में यगोना या नगोना क्या कहते हैं, नगोना या यगोना, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आज सुनते हैं कि धर्म के स्थानों में भी नगोना का प्रवेश, यगोना का प्रवेश होने लगा है। रामायण पढ़ते हैं, रामायण का गान करते हैं, रामायण की लीला करते हैं, रामलीला, उसमें भी यगोना का व्यवहार करके भ्रष्ट होकर उसका कीर्तन करते हैं। जो खुद ही ऐसा करते हैं उसे समाज को क्या शिक्षा मिल सकती है? यह सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। इसलिए यदि हमारे बातों में प्रतीति हो तो इसका व्यवहार जरूर बंद कर देना चाहिए। विशेष करके जो रामायण का गान करते हैं, रामलीला करते हैं, उनको तो इस बीमारी से, एक खतरनाक बीमारी से बहुत दूर रहने की जरूरत है, बहुत दूर। नहीं तो उनका करा धराया सब कुछ बेकार का हो जाएगा, उससे समाज को कोई भी कल्याण नहीं होगा, समाज का अहित होगा। ऐसे यदि लोग यदि करते हैं तो उनका रामायण पाठ भी बंद हो जाना चाहिए। पहले ये सब बंद करके तो रामायण पाठ करें, समाज को अच्छी शिक्षा दें। इसलिए मद्यपान ही नहीं, गांजा भांग इत्यादि आजकल बच्चों में भी चल पड़े हैं। स्कूल के बच्चे भी आजकल ग्रहण करने लगे हैं। इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बीमारियां होती हैं, अंत में टीबी, कैंसर सब होते हैं, लोग मरते हैं। दूसरी बात, किसी प्रकार का जुआ इत्यादि नहीं खेलना चाहिए। जुआ पासा आजकल राष्ट्र के गवर्नमेंट ही खिला रही है, लॉटरी और क्या क्या, इसे आदमी सर्वनाश आदमी का हो जाता है। बड़े बड़े धनी लोग भी, महाराज युधिष्ठिर ने भी ये दिखलाया, युधिष्ठिर ने खेला, क्या दुर्गति हुई, अपनी पत्नी को भी पासे में हार गए और कैसे वन जंगल में जाना पड़ा। इसलिए हम लोगों को इनसे शिक्षाएं लेनी चाहिए। दूतं पानम स्त्रियम, स्त्रियों को या तो अपनी माता समझो, अपनी पत्नी के अतिरिक्त जितनी भी स्त्रियां हैं, प्रौढ़ स्त्रियों को अपनी माता समझो, और जो अपनी उम्र की हैं उनकी बहन समझो, और छोटी बच्चियों को अपनी बेटी समझो। तीन रिश्ते रखो यदि कल्याण चाहते हो। दुर्नीति प्रति बुरी नजर से उन्हें कभी नहीं देखो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, उस समाज का भी सर्वनाश हो जाता है। उनका आदर होना चाहिए। जहाँ पर स्त्रियों का आदर नहीं है और वे सब गुणों से युक्त नहीं हैं, उस देश की, राष्ट्र की कभी भी कदापि उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए स्त्रियां भी समझ बूझ करके चलें, पति में प्रेम हो, सदाचार संपन्न हो। सीता जी से किसी ने पूछा, राम लक्ष्मण और सीता जी जा रहे थे, कुछ गांव की स्त्रियां पानी भरने आ रही थीं, पानी भर रही थीं, इनके रूप को देख करके मोहित हो गई, सीता जी को अपने समाज में बैठा लिया, पुरुषों ने राम लक्ष्मण को बैठा लिया, कुछ बातें इधर उधर की होने लगी। स्त्रियों ने पूछा, इसमें से तुम्हारे पति कौन हैं? तो उन्होंने लक्ष्मण की तरफ में देख करके कहा, ये हमारे देवर हैं। क्या मतलब हुआ? कहा, जैसे ये राम जो बैठा है ये ये हमारा पति है, ऐसा नहीं कहा। देखो कैसे शील के साथ में, सम्मान के साथ में, घूंघट की ओट से उन्होंने बतलाया, इशारे से, ये जो हैं गौर शरीर वाले ये मेरे देवर हैं, बस बस इतने में ही सब कुछ हो गया। ये सब रीतियां हैं, नीतियां हैं, देश देश में ये रीति नीतियों का पालन होता है। ये सनातन धर्म की पहली सीढ़ी भी नहीं, उसमें प्रवेश करने के लिए द्वार स्वरूप ये सदाचार है। और जीव हिंसा खबरदार मत करो। मांस माने होता है मांस खादति, जिसको हम आज खा रहे हैं वो भी वो रूप धारण करके हमें खाएगा, ये समझ रखो। मीट meat meat जिसको हम खा रहे हैं मीट वो हमको खाएगा, ये समझो। ऐसा नहीं कि तुम खूब खा रहे हो, खूब खा रहे हो आनंद से, एक दिन वही हमारी मांस को खाएगा, समझो। थोड़ा सा अपना यहां पर काट करके देखो जो कैसा लगता है, और दूसरे को तो मछली को और बकरे को गाय का मांस खाते हैं, ये सब उचित नहीं। ये प्रवेश करने के लिए मार्ग हैं, इनको नहीं ये करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। और एक बड़ी बुरी आदत है, सब धर्म जितने हैं सब समान हैं, सब आदमी समान है। भगवान बड़ा बेवकूफ था जो उसने 5 उंगलियों को बराबर नहीं बनाया। क्यों बराबर क्यों नहीं बनाया? उसकी अकल नहीं थी? यदि बराबर बना देते तो आप एक किसी पात्र को पकड़ नहीं सकते थे, बहुत बुद्धिमान है वो, हम लोगों से सबसे अधिक बुद्धि अकल रखते हैं। उसने जैसा बनाया है ठीक बनाया है, सभी बराबर नहीं हो सकते। एक आदमी मोटा है, एक आदमी पतला है, कैसे बराबर तू बनाएगा? क्या उसके शरीर को छांट करके काट करके बराबर बनाएगा, वजन करके? सब तो बराबर बनाएगा, बुद्धि को कैसे बनाएगा बराबर? तू कैसे बनाएगा? इसलिए सभी धर्म समान नहीं है भाई। कुछ लोग हैं जिनको बुद्धि नहीं, वो कह सकते हैं अरे सभी बराबर हैं, सभी बराबर है तो एक स्त्री के लिए पति भी, देवर भी, दूसरे भी, सभी बराबर हैं? हो सकता है ऐसा? मैया और स्त्री और बेटी सभी बराबर हैं, एक ही है? ये सब अधर्म है। जो जैसा है उसका समन्वय ठीक से करना है, कर्ता के साथ में क्रिया कर्म सब जहां जहां जो जो ठीक है उसको ठीक रखने का नाम है अन्वय। ऐसा नहीं कि सभी बराबर हो गए तो भगवान ने ऐसे सबको बराबर कैसे नहीं बनाया? सबको स्त्री ही बना देते, पुरुष एक भी नहीं बनाते, और सभी एक ही तरह का होता। इसलिए सभी धर्म बराबर नहीं है। सनातन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है, किसी के प्रति द्वेष हिंसा नहीं है। कुछ नए नए धर्म निकल रहे वो धर्म नहीं है। कुछ जादू विद्या सीख लिया बस भगवान बन गए। हमारे भारतवर्ष में दिल्ली में एक परिवार है, उसके सभी लोग भगवान हैं, और रोज लड़ते हैं एक भगवान दूसरे से, ये भगवान है? बहुत तरह के शिष्य करते हैं, उनका धन हरण करते हैं, किंतु शिष्यों का संताप और दो यह है नहीं हरण कर पाते। उनकी भारतवर्ष की स्त्री से पेट नहीं भरा तो इंग्लैंड में गए, अमेरिका में, वहां पर 5 स्त्रियों को रखा, और फिर वो आकर के और फिर चली गई, फिर पागल हो गए। ये भगवान है? सब धर्म बराबर है? इसके मानने वाले सब भगवान हैं? कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं आज से हमने 50 वर्ष पहले सुना कि देखो प्रजापति ही भगवान का भगवान है और हम उनकी संतान है, हमारे गुरु ही प्रजापति हैं, वो शंकर हैं, उनको जो मान करके पूजा करेगा तो उनका तो ठीक है और नहीं तो एक वर्ष के अंदर में प्रलय होने वाला है, जो शरण नहीं लेगा उस सबका ध्वंस हो जाएगा। आज तो 50 वर्ष हो गए कुछ नहीं हुआ, वो मर गए, उनके बेटे भी जो ब्रह्म थे वो भी प्रजापति, दो प्रजापति तो खत्म हो गए हैं, अब तीसरे प्रजापति शायद कोई निकले हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। भागवत में, गीता में, रामायण में, वेदों में इनका कहीं भी नाम नहीं है, इसलिए आप लोग सावधान रहें। गीता भागवत में जिसको सनातन धर्म कहा गया है भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, ये सब भगवान हैं, उनको मानिए, उनका एक नाम लेने से ही उल्टा नाम जब तक जगत जाना और दूसरे का नाम करने से ऐसा होगा सभी बराबर हो गए, सभी धर्म बराबर नहीं है। यदि सभी बराबर धर्म है तो चोर का धर्म है चोरी करना, डकैतों का काम है उनका धर्म है डकैती करना, ये भी ठीक है, सभी ठीक है, मदिरा पीते हैं वो भी ठीक है, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये सभी ठीक है, हम भी ठीक है, तुम भी साधु हम भी साधु, बस एक ही धर्म है, सभी ठीक है, ये बेवकूफ कह सकता है, बेवकूफ कहते दूसरा नहीं कह सकता। भगवान ने बुद्धि और विचार दिया है, विवेक, हम विचार तो करेंगे कुछ, इनका आचरण कैसा है, ये गीता भागवत रामायण मानते हैं कि नहीं, इनका सदाचार है कि नहीं, ये जो कहते हैं ये ठीक है कि नहीं, विचार करो तब उनके विचारों को लो। सभी के विचारों को मान लिया, सभी ठीक हैं, सब ठीक है, हमारी मैया भी ठीक है, बेस्या भी ठीक है, सभी बराबर हैं, चोरी डकैती करने वाला, तुम्हारी मैया को गाली करने वाला, वो भी ठीक है, सभी ठीक है, कैसे ठीक है, इस पर विचार करो भाई, आंख बंद करके, बुद्धि को बंद करके सभी को मत कहो ये सभी ठीक है, सभी ठीक नहीं है। जो भगवान को मानते हैं, सदाचार संपन्न है, भगवान का नाम लेते हैं, उसके अनुसार में सदाचार पूर्वक रहते हैं, ये सब सनातन धर्मावलंबी हैं, इनके विचारों को हम लोग ग्रहण करेंगे। तो तुलसीदास जी ने सरल सहज शब्दों में श्रीमद् भागवत जो संस्कृत में उसका अनुवाद करके दिया है, उसको थोड़ा सा बुद्धिमान आदमी भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। बहुत से बाबा, बहुत से कुमारियां, बहुत से क्या क्या, बहुत से धर्म आजकल निकल रहे हैं, सावधान रहेंगे, सब जगह अपना सिर मत नवा देंगे, ये सनातन साधन नहीं है। इसलिए इस विचारों को लेकर के जीवात्मा जितनी है, प्राणी मात्र भगवान के दास हैं, हम उनको भूल करके इस जगत में दुख क्लेश पा रहे हैं, उनका स्मरण करने वाले कुछ सुखी भी हैं, अपने अपने कर्मों से कुछ सुखी हैं, किंतु यदि ख्याल रखो, यदि भगवान को नहीं माना, उनके उपदेशों को नहीं मानो, तो वो एकदम चक्की में पीस करके सातु बना देगा, याद रखो। इसलिए सद्धर्म पर चलो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, इससे बढ़कर के कलयुग में कुछ नहीं, वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में, गीता में, भागवत में, रामायण में, जितने भी ग्रंथ हैं सब में यही कहा गया, हरि नाम और हरि नाम का कीर्तन, जो करता है उसको साधु मानो, सदाचार संपन्न लोग भगवान का जो स्मरण उनको साधु मानो, ये सब सनातन धर्म के भित्ति है, उसमें कहीं भी किसी धर्म के प्रति निंदा स्तुति ये सब नहीं, भगवत संबंधी बातों को साधारण सरल सहज रूप में बतलाया गया। अब मैं कुछ सनातन धर्म के विचारों के अनुसार में भक्तों का कुछ विचार बतला रहा हूं, इसको समझने की चेष्टा। कल हमने कहा कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम अपने शरीर की लौकिक कामनाएं मत करो, केवल मात्र भगवान के सुख के लिए जो कुछ करो, तुम्हारी अखिल चेष्टाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, उनकी सेवा के लिए हो, और अखिल भोगों का त्याग करो। यदि कृष्ण को, भगवान का या सनातन धर्म को पालन करना चाहते, अखिल अपने भोगों का परित्याग कर सब चीजों को भगवान को देकर के उनका उच्छिष्ट रूप में ग्रहण करके जीविका का निर्वाह करो, कर्ता मत बनो, सब कुछ भगवान के चरणों में निवेदन करो, उनके प्रसाद से जीवन का निर्वाह करके बड़े सुख से के साथ में अपना जीवन निर्वाह करो। इस चीज को समझने के लिए हमने ये भी बतलाया कि भक्ति कर्म और ज्ञान से ढकी हुई नहीं रहती। इस चीज को समझिए, महाराज हरिश्चंद्र थे, बड़े भारी दानी थे और संसार में सत्य बोलने वालों में प्रधान बने थे। जो कह देंगे उसको करेंगे। विश्वामित्र जी को उन पर दया आई, ये भलमानुष कहता है कि मैं बड़ा भारी दानी हूं और सत्य बोलने वाला है, किंतु सत्य से और दान से इसका कोई भी संबंध नहीं, ये तो साक्षात कर्मी है। स्वप्न में उनका राज्य मांग लिया, आप लोग जानते हैं, और उनको कहा जैसे दक्षिणा दो, राज्य का संकल्प करके 10,000 सोने की मुद्रिका दो। राजा ने कहा खजानची को, जल्दी से बाहर करके लाओ खजाने से। अरे झूठा, जब राज्य हमको दे दिया तो तेरा राज्य रहा कहां और खजाना कहां, खजाना तेरे पास में रहेगा, इतनी अकल नहीं। होश उड़ गए, कहां से दूं, अपने बेच करके दो, ये सारा राज्य तो हमारा है और हमारे राज्य में नहीं बिकेगा, अब तो और भी मुश्किल, कहां क्या करूं, जाओ काशी में, ये त्रिशूल पर खड़ी है, वहां से अपने से बेच करके लाओ। वहां गए, अपने को बेचा तो केवल 5,000 मूला सोने की सिक्के, और 5,000 नहीं मिला। अपने बेटे को बेचा, अपनी स्त्री को बेचा, सबको बेच करके 2,500 और मिला, 5,000, ये 5,000 10,000 मिला, विश्वामित्र को दे दिए। किस लिए? महाराज विश्वामित्र जी ये चाहते हैं कि इसका जो अभिमान है, मैं जो राजा हूं, ये अभिमान दूर हो। दूसरी बात, ये समझता है कि मैं ये हरिश्चंद्र हूं राजा और ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये भी झूठ बात न? इसलिए रात में सर्प बन करके परीक्षित को, उनके बेटे रोहिताश्व को डस दिया, वो मर गया। मरने के बाद में रात में वर्षा हो रही थी, जाड़े का दिन, ठुटती हुई उनकी पत्नी श्मशान भूमि में ले आई, संस्कार करना चाहती थी, महाराज हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे, डोम बन करके उन्होंने कहा जे कौन है, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। इतने में बिजली चमकी, उन्होंने देखा, अरे मेरा पुत्र मरा है, मेरी स्त्री है यहाँ, वो रो रही है, कहा जे जैसे भी हो मैं धर्म का परित्याग नहीं करूंगा, इसी को धर्म समझा उन्होंने, और कहा जैसे तुम उस इसके बदले में दो कर तब जलाओ, तो उन्होंने अपना अंचल चीर करके देने लगी कपड़े। इतने में धर्म स्वयं और विश्वामित्र जी भी वहां पर उपस्थित हो गए, बोले जे देखो मैंने इसलिए किया था, तुम इसको पति मान रहे थे, स्त्री मान रहे थे और अपना बेटा मान रहे थे, अपने को राजा मान रहे थे, राज्य ले लिया, राजा तो नहीं फिर भी तुमको भी मान, और ये शरीर को मान रहे मैं हूं और ये मेरा है ने? अपने को बेच दिया, स्त्री को बेच दिया, स्त्री पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, फिर अपना स्त्री कैसे मान रहा? इस चीज को समझो, झूठा तेरी समझ में नहीं आता? उनकी आंखें खुली, उनके चरणों में गिर गए। महात्मा विश्वामित्र जी बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, राम की बहुत सेवा की है आप लोग जानते हैं, तत्वज्ञानी थे, उनको तत्व ज्ञान दिया। इसलिए इनका कर्म, भगवान का भजन करते थे, राम राम कृष्ण कृष्ण करते थे, किंतु ऐसे कर्मों से अपने को समझते मैं बड़ा भारी दानी हूं, राजा हूं, ये भाव समझ, ये कर्म के द्वारा भक्ति ढकी हुई है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। जब ये हम समझेंगे कि ये मैं भगवान का दास हूं, मेरी स्त्री भगवान की दासी, हमारे पुत्र भगवान के दास हैं, हमारा सब कुछ ये भगवान का है, और उनका नाम स्मरण कीर्तन श्रवण कीर्तन का, ये है भक्ति। इसलिए यहां पर कर्म से ढकी हुई है। दधीचि मुनि का आप लोग नाम जानते हैं, शिवी का नाम जानते हैं। दधीचि जी ने देवताओं की प्रार्थना पर अपने शरीर में दही और चीनी बूरा लगाकर गाय से चटवा करके अपना हाड़ जीवित दे दिया था, जिससे वज्र बना था, और उस वज्र से किसका वध हुआ? वृत्रासुर का वध हुआ, और उसका एक भाग से धनुष बना, जो रामचंद्र जी ने जिस धनुष को तोड़ा था, परशुराम वाला, शंकर वाला धनुष। इसमें भगवान की भक्ति क्या क्या गंध है? ये तो शारीरिक ये सब चीजें हैं, भी भगवान का भजन करते हैं स्वर्ग के लिए, बस हम स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए ये भी भक्ति नहीं है। शिव जी का नाम जानते हैं, कबूतर की रक्षा के लिए और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, ये सब सनातन धर्म नहीं है, उसके अंग एक बाहर से हैं, ये सदाचार है। भक्ति कहां से आरंभ होती है? महाराज ध्रुव से, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं, उन्होंने राज्य के लिए भगवान की आराधना की, खाना पीना छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हवा तक भी छोड़ दिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ, किंतु किस लिए किया? भगवान की सेवा के लिए किया या किस लिए, इसको समझिए, किस लिए किया? अपना राज्य पाने के लिए। भगवान का दर्शन का ऐसा फल है, अरे मैं कांच का टुकड़ा खोज रहा था, कहां मुझे चिंतामणि मिल गई, और मुझे केवल कांच का टुकड़ा दे करके और वो चले गए। हाय हाय, उनका, उनकी भक्ति मैंने नहीं मांगा, उनका प्रेम नहीं मांगा, बस इसी में रह गया। उन्होंने कहा 36,000 वर्ष भोग करने के बाद में तब फिर देखा जाएगा, भोगो इसको, तुमने चाहा। इसलिए ये भक्ति शुद्ध नहीं है, इसको सकाम भक्ति कहते हैं, ये भी शुद्ध भक्ति नहीं हुई। इसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तब प्रहलाद महाराज की भक्ति आती है। वो कैसी? बहुत उच्च कोटि की भक्ति, किंतु शुद्ध भक्ति नहीं है। कैसी भक्ति है? वो भक्ति है इस प्रकार से, सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, सबके प्रति संभाव है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेश भूतेश मद्भक्तिम लभते पराम। समस्त प्राणियों में सम है, सबके अंदर में भगवान को देखते हैं और भगवान में समस्त प्राणी को देखते हैं, इतना उच्च कोटि का। किंतु वो भगवान को ये देखते हैं कि इसी से जगत का सृजन हुआ है, सब जगह व्याप्त है, किसी एक भगवान की कोई सेवा नहीं, कोई खास प्रभु की सेवा नहीं है, केवल ऐसा तो देखते हैं। नृसिंह जी आए, 1 सेकंड के अंदर में वो भी दर्शन देकर के चले गए, उन्होंने कोई सेवा नहीं कर सकी। इसलिए प्रहलाद महाराज की अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है? हनुमान जी। हनुमान जी को देखो, खूब जरा अच्छी तरह से समन करेंगे, ऐ बीच में लगा दो थोड़ा, हरि बोल अथवा महामंत्र कोई, लोग की आंख न झपके।
कृष्ण गोविंद गोविंद गो,
अर्थात भक्ति का तात्पर्य, भक्ति कहते हैं सेवा वृत्ति को, भगवान की उसने सेवा क्या की, कृष्ण के लिए उन्होंने अखिल भोगों का त्याग कैसे किया और अखिल प्रकार से अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सी सेवा की। जिसने सबसे अधिक श्रेष्ठ सेवा की वही सर्वोत्तम भक्त है। इसका हम धीरे क्रमशः हम इसको दिखलाएंगे, आप लोग इसको समझने की चेष्टा करें। अभी हम चित्रकेतु महाराज कैसे भक्त हुए और उनका चरित्र कैसा था संक्षेप में, और उरुकम प्रभु, श्रीमान उरुकम प्रभु जी, ही विल एक्सप्लेन हाउ चित्रकेतु महाराज सर्व्ड कृष्ण एंड हाउ ही बिकेम ए प्योर डिवोटी। सो यू शुड एक्सप्लेन इन इंग्लिश इन ए शॉर्ट। इस तरह से आप लोगों ने चित्रकेतु महाराज के उपाख्यान से यह देखा कि उन्होंने असुर होते हुए भी असुर बने और उसमें भी प्रसन्न हैं, और वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु मैं वाणी के द्वारा आपका गुणानुवाद सब समय करता रहूं और शरीर के समस्त इंद्रियों से आपकी सब समय सेवा में नियुक्त रहूं। कैसे, इसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे बच्चा पशु पक्षी उसके पंख नहीं उगने पर भी मैया के लिए सब समय चिंतन करता है, मैया कब आएगी, माँ मुझे कब खिलाएगी। और बछड़ा गाय का, जब गाय चरने के लिए जाती है तो शाम को भूखा हो जाता है, उसमें अपने मैया को पुकारता है बड़े जोर से डां डां करके। ये बछड़े जैसा मैं पुकारूं और पक्षी जैसा मैं सब समय आपका चिंतन करूं, और जैसे प्रिया अपने विदेशी परदेश के लिए, परदेशी अपने प्रियतम के लिए जिस प्रकार से चिंतन करती है, उसका गुणगान करती है और आने पर उसकी सेवा करती है, उसी प्रकार से मैं तन से मन से वचन से शरीर से सब प्रकार से आपकी सेवा करूं, अपने लिए कुछ नहीं। इसलिए इस चित्र के तुम उपाख्यान में दिखलाया और दिखलाया, संसार में आदमी जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा सुखी नहीं रह सकता। पुत्र के पिंड देने से ही पिता का कल्याण नहीं होगा, दूसरे के करने से कुछ नहीं होगा, अपने भगवान का भजन करना होगा। ये सब साधारण रूप में हम लोगों ने बतलाया। अब दूसरा एक चरित्र आता है भागवत में, बहुत ही सुंदर, महाराज भरत जी का। अभी हम लोग सोचते हैं कि एक पिता का पुत्र ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मणी होगा, यह बात ठीक नहीं। क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य ही होगा, ब्राह्मण का पुत्र अत्यंत दुराचारी होने पर भी वो ब्राह्मण ही रहेगा। पूज्य विप्र ज्ञान गुण हीना, तुलसीदास जी का एक चौपाई है, इसका लोग गलत अर्थ लेते हैं, शुद्ध नहीं लेते। गीता में बतलाया गया चतुर्वर्णम व्यास सिस्टम गुण कर्म विभाष, गुण और कर्म से ये जातियां बनी थी हमारे भारतवर्ष के कल्याण के लिए, बड़ी सुंदर पद्धति थी। अब हम लोगों ने उसे ऐसे बिगाड़ दिया कि इससे अब हमारा कल्याण होना बड़ा मुश्किल है, इसको एकदम भ्रष्ट कर दी। पहले गुण के अनुसार में और योग्यता के अनुसार में भगवान की कृपा से वो ब्राह्मण के रूप में होता था। ब्राह्मण का पुत्र यदि गुण हो तो ब्राह्मण कहलाएगा। रावण का पिता विश्वश्रवा था, वो ऋषि और ब्राह्मण था, किंतु राक्षस कैसे हो गया, उसको ब्राह्मण का सम्मान नहीं दिया गया। दूसरी बात, एक वेश्या थी, उसका लड़का था जबाला नाम, और एक ऋषि के पास में पढ़ने के लिए वेद अध्ययन के लिए गया। ऋषि ने कहा बेटा तुम कौन से गोत्र के हो, मैया से पूछा ना, तो वो गया मैया से पूछा जे हमारे पिता का गोत्र क्या था, हमारा गोत्र क्या है, ऋषि पूछ रहे हैं वेद अध्ययन कराने के लिए, हमको उपनयन दे करके तब वो पढ़ाएंगे। मैया ने कहा जिस देखो मैं युवावस्था में हमारे पास में बहुत से पुरुष आए और तुम किसका बेटा है मैं नहीं जानता, तुम ऋषि से कहना जब मैं जबाला का पुत्र हूं, मेरी मैया का नाम जबाला है, मैं उसका पुत्र हूं, बस यही कहना। वो ठीक ठीक जा करके सत्य बात उन्होंने कह दी, महाराज हम मैया ने हमारा कहा है कि युवा अवस्था में बहुत से पुरुष और लोग आए, किसे तुम जन्मा मुझे पता नहीं है, तुम ये ऋषि से कहना कि मेरे मैया का नाम जबाला है और उन्हीं का मैं पुत्र हूं। ऋषि सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, ओ ब्राह्मण के अतिरिक्त तो कोई भी सत्य बात नहीं कह सकता, इसलिए तुमने ऐसी बात को भी सत्य हमसे कहा, इसलिए जरूर तू ब्राह्मण का बालक है। उन्होंने उसको उपनयन देकर के कहा कि तुम ब्राह्मण है और वेद अध्ययन कर रहे, ऐसे गुण और योग्यता देखी जाती थी, सर्वत्र ऐसी बातें हैं, बहुत इसके प्रमाण हैं। तो कौन विषय पर बोल रहा है, भरत महाराज के, तो उनके पिताजी का नाम ऋषभ, ऋषभ देव था ना, उनके 100 पुत्र थे जिसमें 9 तो ऐसे जोगिंद्र हुए कि जाति पाति से सर्वथा ऊपर ब्रह्म ज्ञान वाले परम भागवत हुए, कवि हवि अंतरिक्ष इत्यादि, और एक भरत जो हुए ये भारतवर्ष के अधीश्वर क्षत्रिय हुए, और 81 जो हुए वे स्मार्त ब्राह्मण कर्मकांडी जो ब्राह्मण है ये, और 9 उसमें जो बचे वो 9 वर्षों के मालिक क्षत्रिय हुए। एक पिता के बहुत से पुत्र बहुत से जाति के ये कैसे हुए, ये तो भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। इसे गुण और कर्म के अनुसार में यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के भी उसका गुण ब्राह्मण का नहीं है तो ब्राह्मण का सम्मान जो पाने योग्य नहीं। चमार मोती का काम करता है, चमार का शाम का काम करता है, शराब पीता है, रावण जैसा है, तो दुष्ट उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। किसी नीच जाति में भी होकर के उसमें सब गुण हो यथार्थ में और भगवान का भजन करता है तो उसको शूद्र कुल में जन्म लेने पर भी उसको बहुत उन्नत स्थान दिया जाएगा, यह ब्राह्मण का भी गुरु हो सकता है। व्यास जी कौन जाति के थे, नारद जी कौन जाति के थे, शूद्रानी के गर्भ से तो पैदा हुए नारद, व्यास जी भी एक अस्परा के पेट से वो निकले थे, इसलिए ज्ञान के ऊपर में योग्यता के ऊपर में ही ये सब जातियां थीं। इसलिए भरत महाराज के पिताजी के इतने पुत्र होने पर भी विभिन्न विभिन्न प्रकार से, इसमें भरत जी जो थे बहुत ही योग्य और भगवत भक्ति से संपन्न थे, क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों के भी ये गुरु होने लायक थे। इसके विषय में कैसा उनका चरित्र कैसे है, इसमें शुभानंद ब्रह्मचारी जी संक्षेप में कुछ बतलाएं, सरल रूप से बतलाएंगे उनकी शिक्षाओं को।
गौरचंद्राय
आज जी ने कहा है पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, इसका तात्पर्य बहुत छिपा हुआ है। शास्त्रों में विप्र किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं, द्विज किसे कहते हैं, यह सब दिया गया। एक जगह पुराणों में लिखा है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, और संस्कारात् द्विजच्यते, गुरु के द्वारा पुरोहित के द्वारा जब उसका उपनयन इत्यादि संस्कार होता है तो उसको द्विज कहते हैं। ये ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों का ही संस्कार होता है, इसलिए सभी द्विज हैं। किंतु वेद पाठात भवेत विप्र, वेदों का अध्ययन करने वाला जो है संस्कार के बाद में, पहले हुआ संस्कार द्विज बना, इसके बाद में क्या हुआ, वेद पाठ अध्ययन करने लगा तब हुआ ये विप्र, और अंत में ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म में विचरण करने वाला है उसको कहते हैं ब्राह्मण। यहां पर विप्र माने यदि कोई जिसका संस्कार हो चुका है और जो वेद पाठ भी करता है किंतु ब्रह्म नहीं जानता है, कोई भी बात नहीं जानेगा, इसलिए ऐसे विप्र को भी आदर कर। यहां पर ज्ञान गुणहीना का ये ब्रह्म अभी नहीं अनुभव कर सका है, किंतु सदाचार संपन्न है। पहला और दूसरा संस्कार भी हो चुका है किंतु वो ब्रह्म नहीं जानता है, ब्राह्मण भी नहीं हुआ है। ऐसे भी आदमी को जो कि उसके लिए चेष्टा कर रहा है उसका आदर करना चाहिए। तुलसीदास के विचारों का ये सार है, नहीं तो वो रावण को राक्षस क्यों कहते राक्षस। इसलिए ये सब बातें थी इसमें। चलिए,
गुरवे गौरचंद्राय।
चित्रकेतु का और भरत जी का उपाख्यान सुना, ये सब शिक्षाओं से भरे पड़े हैं, ये सब सनातन धर्म है। तो भी सनातन धर्म का भी ऊंचा उपदेश नहीं, इसी को कहते हैं ज्ञान भक्ति, जो प्रहलाद इनके भट्ट महाराज जी के चरित्र में देखा किस प्रकार से इन्होंने साधन किया। साधन की उच्च अवस्था पर पहुंचने पर भी एक हिरण के प्रति थोड़ी सी आसक्ति आ गई, ये अच्छा काम है, प्राणी पर दया करनी चाहिए। दया करने गए, ये सात्विक दया है। तो भी भगवान के भजन करते समय जो किया उसे नीचे दो जन्मों के लिए, तीन जन्मों के लिए नीचे गड़ गए। फिर उनको तीन जन्म लेना पड़ा, हिरण की चिंता करते करते हिरण बन गए। तो यदि कोई भगवान चिंतन करते करते भगवान का नाम करेगा तो क्या होगा, इसको चीज को समझिए, इसमें यह शिक्षा है। वो हिरण की चिंता करते करते हिरण बन गए, और यदि हम भगवत चिंतन करते 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 उनके भक्तों की चिंतन करते 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 शरीर को छोड़ेंगे, हम अब मनुष्य जन्म नहीं बल्कि हम उनके भक्तों की के रूप में हम जन्म लेकर के उनकी सेवा करेंगे। इसलिए मरते समय में भगवान का नाम होना चाहिए। गंगा जी का पानी देते हैं और चीज का चिंतन ना आए। इस प्रकार से भरत महाराज का चरित्र सुना, थोड़े से छिटक गए, उनका जीवन ही ये बर्बाद हो गया, तीन जन्म लग गए। तो भी इसमें ये चीज देखते हैं कि भगवान की सेवा क्या की, ये साधक हैं। हनुमान जी साधक नहीं, इनसे बहुत ऊंचे, प्रहलाद महाराज जी से बहुत ऊंचे, वो क्षण क्षण में भगवान राम की सेवा करते हैं। एक समय की बात है, सीता जी स्नानागार में थी और श्रृंगार कर रही थी स्नान करने के बाद। हनुमान जी बालक जैसे, उनके पुत्र जैसे वहां पर पहुंच गए। मैया क्या कर रही, बेटा मैं सुहाग ले रही हूं, सिंदूर ले रही थी। सुहाग, सुहाग मैंने क्या, ये सिंदूर पहनने से हमारे पति जीवित रहेंगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा, मैं विधवा नहीं हूं। अच्छा, इससे राम सुखी होंगे तो ठीक है। हाँ, उन्होंने किया, जब माता जी जब चली गई बाहर में तो वो श्रृंगार घर में पहुंच गए और सिंदूर को पानी से घोल कर और अपने सारे शरीर में पोत करके और राज दरबार में पहुंचे, राम के पास में। सभी लोग देख करके हंसने, सबने अरे ये क्या कर लिया हनुमान आज। हनुमान जी ने कहा, यदि मैया के यहाँ पर केवल श्रृंगार लगाने से, सिंदूर लगाने से रामचंद्र जी सुखी रह सकते हैं, कोई कष्ट नहीं होगा और चीज जीवित रहेंगे, तो मैं अपने सारे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। ये अखिल चेष्टा परायण। और एक दिन की बात है, एक दिन सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी चारों ने विचार किया, ये हनुमान जब से आया तब से हमारी सेवा बंद हो गई, ये सब सेवा ले लेता है, हमको कोई सेवा ही नहीं देता। इसलिए हम लोग जितने दिन और रात की सेवाएं हैं हम लोग इसको बांट लें, और बांट लिया ऐसा कि हनुमान के जिम्मे एक भी सेवा नहीं रही। सवेरे से लेकर के फिर दूसरे सवेरे तक की सेवाओं को आठ भाग करके दो दो बार घंटे के हिसाब से उन्होंने बांट लिया। हनुमान के पास में कोई सेवा नहीं रही। हनुमान जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने रामचंद्र जी के पास में फटकने नहीं दिया। हनुमान जी रोने लगे और जाकर के प्रभु से, प्रभु हमारी सेवा सब तो इन लोगों ने बांट ली, अब हमको कोई सेवा ही नहीं दी, मैं क्या करूं। तो उनसे यदि कोई सेवा बच रही हो तो तुम वो करना। प्रभु मैं अब तो सारी सेवा ले ली। अच्छा ठीक है, तुम भी विचार करके कुछ सेवा करना हमें। तो प्रभु हम एक सेवा मांगते हैं, मैं आपके पास में नहीं आऊंगा, मैं बाहर घर के दरवाजे के बाहर में रहूंगा, और जब आपको जम्भाई आए तो मैं चुटकी बजाया के आऊंगा, बस ये आप सेवा दीजिए। जम्भाई आए ना तो राम राम कह करके चुटकी बजा लेना चाहिए, माने जम्भाई ना आए। जम्भाई आने से फिर क्या होता है, आलस्य होगा। आलस्य से क्या होगा, आप सुन रहे हैं ना, थोड़ी सी जम्भाई आई, इसके बाद में आलस्य थोड़ा सा हुआ, इसके बाद में कथा सुनने में रुचि रही होने से आप झट गिर पड़े। लाखों मन का पत्थर आपकी आंखों में चढ़ जाएगा, आप लाख चेष्टा करेंगे आप उससे उड़ नहीं हो सकते, वो निद आ जाएगी। इसलिए आलस्य ही नहीं करना चाहिए। जब